उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा का निर्माण। उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए यह जरूरी था कि पहले तो उपनिवेशवाद को ठीक तरह से समझा जाए और फिर इस समझ के आधार पर एक राष्ट्रवादी विचारधारा विकसित की जाए। शुरुआती दौर के राष्ट्रवादी नेता इस मामले में छात्र भी थे और शिक्षक भी। 1870 और 1880 के दशकों में उपनिवेशवाद विरोधी कोई बनी बनाई विचारधारा पहले से मौजूद नहीं थी। अपने अनुभवों और अपने समय के यथार्थ को ठीक ठाक परखते तौलते हुए इन नेताओं को खुद ही ऐसी एक विचारधारा विकसित करनी थी। जाहिर है कि किसी वैचारिक संघर्ष के बिना कोई राष्ट्रीय संघर्ष छेड़ा ही नहीं जा सकता था। इन नेताओं को लोगों को यह समझना था कि हम एक राष्ट्र हैं और उपनिवेशवाद हमारा दुश्मन और इसी दुश्मन के खिलाफ हमारा यह संघर्ष है। उन्हें बहुत से सवालों के जवाब तलाशने थे। मिसाल के तौर पर कुछ सवाल ये थे कि क्या ब्रिटेन भारत के हित के लिए भारत पर शासन कर रहा है? क्या शासकों और शासितों के हित एक दूसरे से मेल खाते हैं या इन दोनों के हितों में एक बुनियादी अंतर्विरोध है? फिर क्या भारतीय जनता का यह अंतर्विरोध भारत में सरकार चला रहे ब्रिटिश अफसरशाहों के साथ है या ब्रिटानी सरकार के साथ है या कि उपनिवेशवादी तंत्र के साथ? क्या भारतीय जनता की लड़ाई विशाल ब्रिटिश साम्राज्य के मुकाबले टिक सकेगी और यह लड़ाई चलाई कैसे जाएगी? इन और इन जैसे ही दूसरे कई सवालों के जवाब तलाशने के दौर में कई गलतियां भी हुईं, जैसे कि उस दौर के राष्ट्रवादी नेता कम से कम 20वीं सदी की शुरुआत तक तो उपनिवेशवादी राज्य का स्वरूप ही समझने में विफल रहे। लेकिन तब इस तरह की कुछ गलतियों को किसी तरह टाला भी नहीं जा सकता था। यह ठीक है कि उस समय के राष्ट्रीय नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कोई जन आंदोलन नहीं चलाया, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ वैचारिक संघर्ष जरूर शुरू किया और चलाया। यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रवादी या साम्राज्यवाद विरोधी कोई संघर्ष उपनिवेशवाद विरोधी आयाम ग्रहण करने से पहले उपनिवेशवाद के बारे में संघर्ष होता है, और कांग्रेस के संस्थापक नेताओं के उपनिवेशवाद के बारे में यह संघर्ष वाकई बहुत अक्लमंदी से चलाया। शुरू से कांग्रेस ने अपने आप को एक पार्टी के रूप में नहीं बल्कि एक आंदोलन के रूप में लिया। केवल उन बुनियादी और व्यापक लक्ष्यों पर सहमति के अलावा जिनकी चर्चा पहले की जा चुकी है, कांग्रेस में शामिल होने के लिए किसी और विशेष प्रकार की राजनीतिक या सैद्धांतिक प्रतिबद्धता जरूरी नहीं थी। एक आंदोलन के रूप में इसने लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्ध अपने समय की सभी राजनीतिक प्रवृत्तियों, विचारधाराओं और सामाजिक वर्गों व समूहों के साथ अपने को जोड़कर रखा। सारांश यह है कि उस दौर के राष्ट्रवादी नेताओं के बुनियादी लक्ष्य ये थे कि सबसे पहले एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी जाए, जनता में राजनीतिक चेतना पैदा की जाए और उसे राजनीतिक रूप से शिक्षित किया जाए, आंदोलन का एक मुख्यालय बनाया जाए और उपनिवेशवाद के खिलाफ एक राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास किया जाए और उसका प्रचार प्रसार किया जाए। कांग्रेस जब अपनी भूमिका में एक बड़े बदलाव के दौर में थी तो इसके दो बड़े नेताओं ने इसके तब तक के काम का जो मूल्यांकन किया था उससे शायद ज़्यादातर इतिहासकार असहमत न होंगे। 1885 से 1905 तक के 20 सालों में कांग्रेस ने आंदोलन की जमीन तैयार करने का काम हाथ में लिया था। कांग्रेस की इस भूमिका के संबंध में दादा भाई नेहरू जी ने दिनसा वाचा को जनवरी 1905 में लिखा था। नई पीढ़ी में जो असंतोष और बेचैनी खुद इसने कांग्रेस ने अपने खिलाफ पैदा की है, यह धीमा और गैर प्रगतिशील संगठन है, वह इसकी अब तक की सबसे अच्छी उपलब्धियों में से है। यह इसका अपना विकास और प्रगति है। हमारे सामने काम यह है कि क्रांति की शुरुआत हो, चाहे यह शांतिपूर्ण हो या हिंसक। क्रांति कैसी होगी या तो ब्रिटिश सरकार की अक्लमंदी या बेवकूफ़ी और ब्रिटिश लोगों की कार्रवाई पर निर्भर करता है। सारांश यह है कि उस दौर के राष्ट्रवादी नेताओं के बुनियादी लक्ष्य ये थे कि सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी जाए, जनता में राजनीतिक चेतना पैदा की जाए और उसे राजनीतिक रूप से शिक्षित किया जाए, आंदोलन का एक मुख्यालय बनाया जाए और उपनिवेशवाद के खिलाफ एक राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास किया जाए और उसका प्रचार प्रसार किया जाए। कांग्रेस जब अपनी भूमिका में एक बड़े बदलाव के दौर में थी तो इसके दो बड़े नेताओं ने इसके तब तक के काम का जो मूल्यांकन किया था उससे शायद ज़्यादातर इतिहासकार असहमत न होंगे। 1885 से 1905 तक के 20 सालों में कांग्रेस ने आंदोलन की जमीन तैयार करने का काम हाथ में लिया था। कांग्रेस की इस भूमिका के संबंध में दादा भाई नेहरू जी ने दिनसा वाचा को जनवरी 1905 में लिखा था, नई पीढ़ी में जो असंतोष और बेचैनी खुद इसने कांग्रेस ने अपने खिलाफ पैदा की है कि यह धीमा और गैर प्रगतिशील संगठन है, वह इसकी अब तक की सबसे अच्छी उपलब्धियों में से है। यह इसका अपना विकास और प्रगति है। हमारे सामने काम यह है कि क्रांति की शुरुआत हो, चाहे यह शांतिपूर्ण हो या हिंसक। क्रांति कैसी होगी यह तो ब्रिटिश सरकार की अकलमंदी या बेवकूफ़ी और ब्रिटिश लोगों की कार्रवाई पर निर्भर करता है। इसी तरह इन 20 सालों में कांग्रेस के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने 1907 में लिखा था, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम देश की प्रगति के ऐसे चरण में हैं जहां हमारी उपलब्धियां छोटी ही होनी है और हमारी निराशाएं बढ़ी हुई। जहां तक इस संघर्ष को पहुंचाने की जिम्मेदारी हमें सौंपी गई थी वहां तक हम पहुंच गए हैं और इसी के साथ अब हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है। इसमें कोई शक नहीं कि अब भारत की नई पीढ़ी को यह जिम्मेदारी दी जानी है कि वह अपनी सफलताओं के द्वारा देश की सेवा करें। हमें यानी वर्तमान पीढ़ी के लोगों को इसी बात का संतोष होना चाहिए कि हमने मुख्यतः अपनी असफलताओं के द्वारा ही देश की सेवा तो की है हालांकि यह काफ़ी कठिन है, फिर भी इन असफलताओं के भीतर से ही वह शक्ति उभरेगी जो आगे चलकर महान लक्ष्य और कार्यों को पूरा करेगी।